आज लोग क्यों हमें शिया, सुन्नी, बरेलवी, हनफी और पता नहीं किन किन नामों से क्यों याद करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लम ने हमें एक दीन पे छोड़ा था। सूरत हज की आखिरी आयत में अल्लाह ताला कहते हैं, हुवा समाकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम सबको पैदा किया, तुम्हें मिल्लत इब्राहिम में दिया और तुम सबका एक नाम रखा और वो मुसलमान था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन इस दुनिया से रुख फेर कर गए, अबू बकर भी थे, उमर भी थे, उस्मान भी थे, अली भी थे, सब थे, लेकिन सब खुद को मुसलमान कहते थे। अल्लाह के नबी के दुनिया से जाने के बाद अगर किसी इंसान के नाम पर मुसलमान उम्मत को जुड़ना होता तो सबसे पहला फिरका अबू बकरी फिरका होता, फिर दूसरा फिरका उमर के नाम पे उमरी फिरका होता, फिर तीसरा फिरका उस्मान के नाम पे उस्मानी होता, चौथा फिरका हजरत अली के नाम पे अलवी होता। मानते हैं कि नहीं मानते? ये तो आप में से किसी को इनकार नहीं हो सकता ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी का मुकाम है आज उम्मत में तो वह अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु है, कि जिनके बारे में खुद अल्लाह के नबी फरमाया करते थे कि मैंने हर एक का हक अदा कर दिया लेकिन मैं अबू बकर का हक अदा नहीं कर सका, कि जिनके लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैंने जिस पर भी इस्लाम पेश किया उसने थोड़ी देर जरूर सोचा, गौर व फिक्र किया, नफा नुकसान देखा, सिवाय अबू बकर सिद्दीक के। और आपने फरमाया कि अगर मैं किसी को खलील बनाता तो मैं अबू बकर को खलील बनाता, लेकिन मैंने अल्लाह को खलील बना लिया। वो अबू बकर सिद्दीक जो दुनिया के अमीन, जो जिनको सिद्दीकियत का मुकाम दुनिया में मिल गया, जिन्होंने उन मुकामात पे अपने नबी की मोहब्बत की और उसके लिए कुर्बानियां दी, जिस वक्त लोग साथ छोड़ जाते हैं। अगर और कुछ ना आपको सुनाऊं, आप में से सारे साथी मेरे लिए नए हैं, लेकिन ये बातें शायद दोबारा आपको मैं ना सुना सकूं, जिंदगी के मेले हैं, लेकिन आज ये बातें सुनकर जरूर सोचिएगा कि हमारे नबी ने कितनी कुर्बानियों से ये दीन हम तक पहुंचाया, लेकिन आज हमने इसको धज्जियों में बखेड़ दिया। सबसे पहले तो ये किताब जो 40 साल की उम्र में शुरू हुई थी, 63 साल की उम्र तक 23 साल के अरसे में थोड़ी थोड़ी करके उतरती रही। इतना वही का बोझ होता था कि आपकी रान मुबारक बोझल हो जाती थी, सर्दियों की दोपहरों में, रातों में आपके जिस्म से पसीना छूट पड़ता था। ये कुरान कोई आसान चीज थी? सूरत हशर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलो अनजलना हाज़ल कुरान अला जबलिल लरअयतहु खाशिया मुतसद्दिया मिन खशियतिल्लाह, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पे नाजिल करते तो तुम देखते कि इसके बोझ से ये टूट पड़ता। आपके सहाबी बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी जब आप पे वही आती थी तो आपकी ऊँटनी की टांगें कांपने लगती थी। एक दफा एक सहाबी साबित है, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी मेरी रान के ऊपर सर रख के आराम फरमा रहे थे, इसी हालत में आप पे वही के असरात शुरू हुए तो आपके सर के बोझ से मुझे लगा कि मेरी रान की हड्डी टूट जाएगी। इतनी तकलीफ सहकर जो कुरान अल्लाह के नबी ने हम तक पहुंचाया, आज हम उस कुरान के साथ क्या करते हैं? हमें कितना समझ आता है? हम उस पर अमल कितना करते हैं? आज जाहरी तौर पर उस कुरान को पढ़ भी लें लेकिन उस पर अमल कितना है? कुरान क़यामत के दिन हमारी शिकायत लगाएगा, खुद अल्लाह के नबी लगाएंगे। सूरह फुरकान खोल के देखिए, घर जाके 19वें पारे का पहला ही रुकू आपको दिखेगा। अल्लाह ताला कहते हैं, वकाल रसूलु इन कौमित तहजू हाजल कुरान महजूरा, ए अल्लाह ये है मेरी वो कौम जिसने इस कुरान को पकड़ने के बावजूद छोड़ा हुआ था। कैसे पकड़ने के बावजूद छोड़ा था? इसको चूमते थे, चाटते थे, इसके तावीज बनाते थे, इसको बेटियों के सर पे रखते थे शादियों के वक्त पे, लेकिन इसके हुक्म को ठुकराते थे, इसके हुक्म नहीं मानते थे। सर से पांव तक दुल्हन का हाल हुलिया, उसके तौर तरीके कुरान और सुन्नत और हदीस के खिलाफ होंगे और कहते हैं रुस्ती के वक्त कुरान इसके सर पे रख दो। बंद कुरान की बरकत क्या मिलेगी? ये बंद कुरान तो मक्का वालों को भी बड़ा अच्छा लगता था। आप इमेजिन कीजिए कि अल्लाह के नबी मक्का में थे और एक आवाज लगाते कि लोगों, मेरे ऊपर एक ऐसी किताब उतरी है कि जिसकी एक आयत तुम पढ़ो तो तुम्हारी बेटियों के रिश्ते हो जाएंगे, और फलां आयत का तुम वजीफा करो तो तुम्हारे मर्दों को जॉब मिल जाएगी, और फलां कर लो तो तुम्हारे बिगड़े हुए बच्चे हिदायत पे आएंगे। सच बताइए, क्या मक्का वाले आपसे दुश्मनी करते? वो तो आप कैसे हो सकता है धागा और पानी लेके आते कि दम कर दीजिए, लेकिन उन्होंने अल्लाह के नबी को ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद जो सताया कि आपके पांव में जूते चिपक जाते थे खून की वजह से, 13 साल मक्का में जो हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी कमर के ऊपर पत्थर सहे और आपको जलते हुए कोयलों पर लिटा दिया जाता था, इस कुरान के पैगाम की वजह से था। कहते थे ये ना कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, हमें तो समझ कोई नहीं आता ना, उनको समझ आता था। वो कहते थे कि हाँ अल्लाह है, लेकिन ये जो बुजुर्ग और जो बुत है ना, ये साथ हैं, ये करने वाले, ये रिस्क देने वाले, ये मुश्किल कुशा, ये गौस, ये फुलां फुलां, और उनके नाम थे बुतों के, लात मनात उजा। किसी को कहते थे ये बहार की देवी है, किसी को कहते ये रिस्क की देवी है, किसी के दर पे जाके कहते इनसे बेटे मांगो, किसी से बेटियां मांगो, भाई अल्लाह से मांगो। कहते थे हाँ इनसे नहीं मांगते, सिर्फ इनके पास आके इसलिए मांगते हैं कि इनके जरिए से अल्लाह में देगा। दुश्मनी हो गई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर ताइफ चले गए। आपने सोचा कि वहां के लोग थोड़े पढ़े लिखे हैं, और याद रखिए कि इल्म की कमी दुनिया की भी और दीन की भी, ये बंदे को शिर्क में ले जाती है। दुनिया का भी पढ़ा लिखा बंदा अगर बिगड़ता है ना, वो शराब कबाब में पड़ जाएगा, वो हो सकता है कि नफ्स की शरारतों में पड़ जाए, लेकिन शिर्क नहीं करता। शिर्क फैलता ही वहां है जहां इल्म की कमी होती है। छोटी छोटी बातों पर लोगों के ईमान को लोग बिगाड़ देते हैं। हदीस का वाक्य है कि एक दफा एक रास्ता था मक्का में से गुजरने का, जंगल से गुजरता था, जो भी वहां से गुजरता, लोगों ने वहां अपना एक बुत नसब कर दिया था, और कहते कि जो भी इधर से गुजरेगा ना कुछ हमारे इस बुत के नाम पे चढ़ावा डाल के जाए, फिर जाने देते थे, मुशरिक थे। दो लोग वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, कहने लग गए, उनको भी यही कहा, कहने लगा कि चढ़ावा चढ़ो। उसने कहा मैं नहीं चढ़ाऊंगा, मुझे पता है कि अल्लाह ताला को सब देते हैं ये, और कुर्बानी और सारी नजरों ने अल्लाह के नाम पे कहा। अच्छा नहीं जो दोगे तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। कहा तुम्हारी मर्जी। कहा नहीं अच्छा कुछ नहीं, यहां से एक मक्खी पकड़ के बस डाल दो, अना का मसला भी हो जाता है ना, इज्जत का मसला। कहा चलो, मक्खी पकड़ी और उस बुत के ऊपर डाल दी कि ये बुत के नाम पे जैसे एक किस्म की नजर चढ़ा दी। कहा चले जाओ, उसको जाने दिया उन्होंने। दूसरे शख्स की जब बारी आई तो वो अड़ गया, कहने लगा मक्खी भी मेरे रब की पैदा किया हुआ है, मैं इसको भी नहीं चढ़ाऊंगा। उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। मुस्लिम की रिवायत है, आप जाके खुद किताब में खोल के पढ़ लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहला शख्स सिर्फ एक मक्खी का चढ़ावा देने पर जहन्नुम में चला गया और दूसरा मरा, मरते ही अल्लाह ने उसकी रूह को जन्नत में पहुंचा दिया। अब आप बताइए कि मक्का वाले ये काम करके भी खुद को मोमिन और मुवाहिद कहेंगे तो क्या वो उनके नाम रखने से हो जाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना सताते थे, जब आपकी दावत में जोश आया और आपकी लोगों के लोगों को सच अच्छा लगता था। याद रखिए मक्का वालों ने अल्लाह के नबी से लोगों को रोकने के लिए एक तरीका इख्तियार किया, क्योंकि लोग हर साल हज के मौके पर चारों तरफ से मक्का में आते थे। अब इनको डर क्या था कि अल्लाह के नबी की दावत में खूबसूरती बहुत है, जिसने अभी तक सुना नहीं वो और बात है, जो सुन लेता है वो आपका दीवाना होता है। कहने के अब क्या करें, अभी हज का मौसम आएगा तो चारों तरफ से लोग आएंगे तो फिर लोग इसकी बात सुनेंगे, अब क्या करें। आपस में बैठे, अबू जहल भी उसमें था, अबू लहब भी था, जो बड़े बड़े सरदार थे। कहा वो एक बात पे एका कर लेते हैं कि जो भी बाहर से आए हम उसको इस नबी के इस शख्स के बारे में ये कहते हैं। कहा अच्छा क्या कहते हैं? कहा कुछ ने कहा कि हम कह देंगे कि नौज बिला सुम नौज बिला, कि इनका तो दिमाग ही चल गया, पागल हो गए हैं ये, इनकी बात ना सुनना। तो वो इन्हीं के बड़ों ने कहा शर्म करो, उसकी बातें कोई पागलों वाली है, लोग कभी नहीं मानेंगे। कहा अच्छा फिर ऐसा करते हैं कि कहते हैं ये काहिन हो गया, झूठा। कितनी बातों के बाद आखिर में जिस बात पर सब माने, उन्होंने कहा कि ये जादूगर हो गया, इसकी बातों का जादू चल जाता है, जो बात सुनता है वो इसके कलमे पढ़ने लगता है। कहा ठीक है यही करते हैं। अब क्या हुआ, जिस रस्तों से लोग मक्का में आते थे ना, वहां वहां इन्होंने अपने अपने लोगों को खड़ा कर दिया। अब इमेजिन कीजिए ना, ये कमरा है अब, ये मक्का है तो इर्द गिर्द से रास्ते, अब एक उस डोर पे खड़ा कर दिया गया, एक उधर एक इधर। तो आप कोई सिस्टर बाहर से आए तो क्या हाल है, अच्छा जरा आपको छोटा सा बता दूं, हमारे शहर में आजकल जरा एक जादूगर आया हुआ, जरा सोच के रहिएगा, उसकी बात ना सुनिएगा। उसके कानों में इतना अल्लाह के नबी के खिलाफ डाल देते जहर कि वो लोग डर जाते और अल्लाह के नबी की बात ना सुनते। तो फैल दौसी की जाके कबूले इस्लाम की कहानी पढ़िए, आपको आम किताबों में मिल जाएगी, मेरे से सारे रेफरेंस बाद में लिखा के ले जाइए और जाके पढ़ें, यकीनन आपके घरों में ऐसी बुक जरूर होंगी। वो कहते हैं कि जब मुझे इतना डरा दिया गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि मैंने रुई ली और कानों में डाल दी कि मैं कहीं उसकी बात ना सुन लूं, उसकी बात सुन के तो जादू चलता है, लेकिन जिसको अल्लाह ने सुनाना होता है ना अल्लाह सुना देता है। कहते हैं कि जब मैं मक्का में आया तो मैंने देखा आपको, लेकिन मेरे कानों में रुई थे, फिर एकदम मेरे दिल में आया मैं कोई बच्चा हूं कि मैं उसकी बात सुन के बत्तों में आ जाऊंगा, मैं सरदार और शायर थे, ये खुद बहुत बड़े सरदार भी थे, लीडर थे। कहते मैंने सोचा कि मुझे कौन बहकाएगा, लाओ मैं जरा सुन के तो देखूं कहता क्या है। और फिर क्या हुआ, एक कान की रुई निकाली और अल्लाह के नबी की जुबान से कुरान सुन रहे थे। हमारा तो गम ये है ना कि मैं कुरान समझ कोई नहीं आता, ये अभी कारी इदरीस जो रो रहे थे वो क्यों रो रहे थे, क्योंकि उनको समझ आता है। हम तो ऐसे गूंगे बहरों की तरह कुरान सुनते हैं कि हाँ ठीक है, बड़ा अच्छा सवाब तो हो रहा होगा, और वो भी दुख की बात है कि मैं बोल रही हूं तो आप अक्सर साथी चुप होते हैं, तिलावत अभी प्ले कर दें तो कई बातें शुरू कर देते हैं। खैर, किस्सा मुख्तसर, तुफैल ने जब अल्लाह के नबी की आवाज से कुरान सुना, इतना अच्छा लगा, पहले एक कान की रुई निकाली, फिर दूसरे कान की निकाली, और बस उस कुरान का दिल पे असर पड़ा कि अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। याद रखिए, सच्ची बात सुनकर उसको वही बंदा मानता है जिसके दिल में तासुब नहीं होता।